چلیں سورہ فاتحہ سے دیکھیں ہم نے کیا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا تھیم ہے سورہ فاتحہ کا، کیا تھیم ہے؟ اگر ایک آپ کو میں جملے میں پوچھوں کہ کیا ہے سورہ فاتحہ، کیا کہیں گے آپ؟ سورہ فاتحہ کا تھیم ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ دعا ہے سورہ فاتحہ. اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جاؤں، راستے میں کہیں لاسٹ نہ ہو جاؤں، کہیں گم نہ ہو جاؤں، وہ کیا کرے، کیا کرے؟ اس کو تو کوئی ڈائریکشنز چاہیے نا، ڈائریکشنز کو وہ پھر اچھی طرح سمجھ لے اور ان کو فالو کرے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا منزل تک جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ ڈائریکشنز دے دی. یہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی، ہدن ہے، یہ ڈائریکشنز ہی تو ہیں، ہدایت ہے، ان کے پر چلتے رہو. تو لیکن ان کو تو وہی فالو کرے گا نا جو لاسٹ ہونے سے بچنا چاہتا ہے، رائٹ؟ تو یہی متقی ہوتے ہیں، متقی لاسٹ نہیں ہونا چاہتے، اس لیے صرف یہی فالو کرتے ہیں ان ڈائریکشنز کو. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہدن للمتقین. ویسے تو ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی دے دی ہیں، لیکن دیکھو جو متقی ہوں گے نا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایسے ڈرنے والے، بچنے والے، چاہتے ہیں کہ بچیں. کس چیز سے بچیں؟ لاسٹ ہونے سے، راستہ گم ہونے سے. کیونکہ یہ سیدھی، آپ کو تھوڑا سا امیجن کریں، ایک سیدھی سڑک جا رہی ہے کہیں کہیں پہنچنا ہے آپ کو، تو وہ ایک راستہ ہے اس کا، بس وہ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کو بہت فکر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں گم ہو جاؤں، بھائی نئی جگہ، نیا علاقہ، کیا کروں آپ؟ تو آپ ڈائریکشن اچھے سے سمجھتے ہیں، ڈائریکشن ساتھ لیتے ہیں اور بالکل ایز اٹ از فالو کرتے ہیں. کیوں آپ ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں میں گم نہ جاؤں، ہے نا؟ تو یہی گمنے سے بچنے والے متقی ہوتے ہیں. اسی لیے ڈائریکشن آپ 10 لوگوں کو دیں گے، کوئی کسی جگہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی کہے گا او چلو یہ ساتھ بڑا اچھا سین نظر آ رہا ہے، ذرا یہ سین دیکھ لیں. چلو وہ کہیں ریسٹورینٹ کوئی ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ کچھ چائے پانی پیتے ہیں، کوئی وہاں اتر جائے گا، کوئی کوئی ایگزٹ لے لے گا، کوئی کوئی لے لے گا. وہ چلو اتنی کون سی جلدی ہے پہنچنے کی، ابھی ذرا آرام کر کے جائیں گے، چلو کہیں ابھی کوئی آرام کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی سیر تفریح کرنا شروع ہو جائے گا. تو جن لوگوں کو لاسٹ ہونے کا ڈر نہیں ہے، جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں منزل تک صحیح سلامت پہنچنا ہے، وہ ادھر ادھر پھر اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور پھر واقعی وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو واقعی جس کو فکر ہوگی نا کہ میں نے پہنچنا ہے، میں نے گمنا نہیں ہے، میں گم گئی تو گئی، وہ پھر ان کو صحیح صحیح فالو کرے گا. تو گناہ سے بچنے والا، یہ گناہ جو ہے نا، یہ انسان کو گم کر دیتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹانے والی چیز ہے، یہ ایگزٹس ہیں. تو جو ان سے بچنا چاہتا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان ڈائریکشنز کو اچھے طریقے سے سمجھے اور ان کو فالو کرے. تو اس کے مطابق زندگی کی گاڑی آپ کو چلانی ہے تاکہ منزل تک آپ صحیح سے پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈائریکشنز آپ کو دے دی. لیکن دیکھیں پھر، ہاں ایک بات اور، کیا ڈائریکشن لے لینا کافی ہے یا ان کے اوپر عمل کرنا بھی؟ ڈائریکشن تو اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، انہوں نے بھی جی پی ایس لگائے ہوئے، لیکن سارے کیوں نہیں منزل پہ پہنچ رہے؟ کیونکہ وہ ایگزٹس لے رہے ہیں، وہ عمل نہیں کر رہے جو ان کو ڈائریکشن بتائی جا رہی. کبھی کبھی آپ کا جی پی ایس بہت بولتا ہے کہ ادھر مڑو ادھر مڑو، آپ مڑتے ہی نہیں. تو منزل تک وہی پہنچے گا جو ڈائریکشنز کو فالو بھی کرے گا. تو اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک کہ آپ جانیں گے بھی، علم بھی آپ کے پاس ہو اور عمل بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں چیزیں کون رکھتا ہے؟ متقی. اب متقی کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی نشانیاں یا صفات یا کوالٹیز، کہ متقی اگر بننا ہے نا، جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، تو تمہیں یہ چیزیں لے کر آنی ہوں گی. پہلی چیز کیا؟ تمہارا ایمان ہونا چاہیے غیب پہ، غیب پہ ایمان ہو، چاہے نہیں بھی چیز ان سین ہے، یہ چیزیں دیکھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایمان رکھنا، کچھ چیزوں پہ بلائنڈ فیتھ ضروری ہے. کیونکہ ان کو دکھایا نہیں جا سکتا، کوئی فرشتے نہیں آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ نے ایمان ایسے ہی لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، قائم کرنی ہے نماز، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرنا ہے، آپ نے اس کتاب پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ جو اس میں ہے وہ سچ ہے میں مانتی ہوں، اور جو حدیث ہے اس کو بھی آپ نے ماننا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تفسیر کی ہے اس کو بھی آپ نے ماننا ہے، اسی طرح آپ نے یہ بھی ماننا ہے کہ جو پچھلے پیغمبروں کے اوپر کتابیں آئیں، صحیفے آئے، وہ سب سچ تھے، میں ان کو مانتی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کے اوپر میرا یقین ایسی ہے کہ جیسے آخرت میرے سامنے ہے، جیسے میرے سامنے ہے بالکل، یعنی آخرت مجھے ایسے نہیں لگتی، وہ پتہ نہیں کب آئے گی، جب آئے گی دیکھی جائے گی، جہاں سارے جا رہے ہوں گے ہم بھی چلے جائیں گے، نہیں، آخرت پہ یقین کا معنی یہ ہے، یہ یقین ہو کہ مجھے مر کے اٹھنا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر نشر ہوگا، میزان ہوگا، یہ سب چیزیں آخرت ہے، تو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، اور صرف یہی اولائکا، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، اس کا معنی کیا ہے، اولائکا بھی آ گیا اور ہم بھی آ گیا، اولائک المفلحون بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، یہی تو ہے جو سیدھا راستہ ہے، یہی تو ہے جو سچائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا نہیں ہے کوئی بھی، تو یہی ہے کامیاب، یعنی اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی کہہ لے ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم ہیں سکسیسفل پیپل، وی آر دا لکی ون، کوئی کتنے بھی دعوے کر لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں کامیاب، باقی اور دعوے کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا جب تک اس کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہوں۔ اب ہاں، آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ اپنے اس پچھلے ہفتے میں جتنا یہ آپ نے پڑھا تھا اس کے اوپر عمل کریں، ایمان بالغیب تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اور بڑھتا جائے گا جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، اور یہ یقین بالآخرہ بھی بڑھتا جائے گا، وہ تو اندر کی چیزیں ہیں، لیکن باقی چیزیں، یقیمون الصلاۃ، تمام نماز کی شرائط کے ساتھ اس کو قائم کرنا، اس کی آپ نے کوشش کی ہے، یہ پانچوں وقت کی بھی نماز ہو اور پوری اس کی شرائط بھی پوری ہو، پھر آپ کے پاس جو کچھ ہے کیا کوشش کی ہے کہ اس میں بندوں کا حق نکالیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوزیشنز دی ہوئی ہیں، کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے علم ہے، چاہے آپ کی کوئی جسمانی قوت ہے، چاہے کچھ بھی، کیا آپ نے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کی کسی بھلائی کے کام میں، کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس کے لیے کوشش کی، کچھ نہ کچھ دیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، کچھ بھی، کسی طرح کی بھی نعمت کو خرچ کرنا ضروری ہے، اگر ابھی تک نہیں کیا تو کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آگے پھر پڑھ سکیں، اس راستے پہ بڑھنا ہے تو یہ کوالٹیز پوری کرنی ہے ہمیں، تبھی ہم انشاءاللہ تعالی ہدایت پر ہوں گے، ہدایت پر چل سکیں گے اس صراط مستقیم پہ۔ اچھا، جب کسی بھی جگہ پہ کوئی انقلابی دعوت دی جاتی ہے، بالکل ایک چینج کی بات کی جاتی ہے، تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ بالکل صحیح صحیح مان لیتے ہیں، جیسے ہے ایز اٹ از، وہ کوئی چوں چرا نہیں کرتے، کہتے ہیں جو ہوگا سو ہوگا، بس ہم نے، چاہے اب ہمیں نفع ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، بس اب ہم کود گئے تو اب واپسی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مان سکتے، وہ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو जिसको हम आज के लफ्ज़ में कहते हैं डिप्लोमेटिक मसलहत पसंद, है नहीं, बस हर तरफ हर एक को खुश कर लो, हर एक को राजी कर दो, किसी तरफ भी कोई दुश्मनी लेने की या कोई मुखालफत की क्या जरूरत है, सारे ही खुश रहें और इधर को भी हम अपना मामला सीधा रखें, उधर को भी सीधा रखें, हमें कोई ये ना कहे कि किसी एक तरफ हो जाओ, क्योंकि हम हर तरफ कोई सिर की, वो क्या पता कौन सी कौन सा पल्ला भारी हो जाए, कौन जीत जाए, कौन ऊपर आ जाए, किसके पास ताकत आ जाए, किसी के साथ भी नहीं बिगाड़नी, सबके साथ बना के रखो, क्या पता कल को इनकी तरफ जाना पड़े, ऐसे भी होते हैं, बैन बैन बीच बीच में रहने वाले। तो हमने उन लोगों की बात लास्ट टाइम पढ़ी पहली 5 आयात में, जो मान जाते हैं, जो कहते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, बस अब हमने कदम रख दिया यहां पे, तब चाहे हमारे टुकड़े कर दो, हम वापस नहीं जाएंगे, अब वापसी है ही नहीं, वो थे मुत्तकीन। ठीक है, आग में जलाओ, टुकड़े करो, हमें टॉर्चर करो, कुछ भी कर दो, चाहे माल चला जाए, जान चली जाए, औलाद चली जाए, मेरा कुछ भी तुम कर लोगे, लेकिन मुझे इस रास्ते से हटा नहीं सकते। ये चट्टानों की तरह लोग होते हैं, ये है मुत्तकी। जो मैंने आपको बताया नहीं मानते, उनका जिक्र आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे अगली 2 आयात में, आयत नंबर 6 और 7 में, इनकार करने वाले बिल्कुल। और उसके बाद आयत 8 से लेके आगे तक इंशाअल्लाह ताला 20 तक, अगली पिच यानी तकरीबन 13 आयात जो अगली है ना, वो उन लोगों के बारे में जिनका मैंने आपको बताया कि ये बीच में रहने वाले हैं, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, इनका मसला ये है कि अब हम, हाँ 20 तक, आयत 20 तक हम इंशाअल्लाह ताला ये बीच में रहने वालों का, जिनको हम कहते हैं मुनाफिकीन, उनका जिक्र पढ़ेंगे। यानी 13 आयात मुनाफिकीन के ऊपर है, 2 आयतें सिर्फ काफरों पे हैं, 5 आयत मुत्तकीन पे। तो आपको ये 20 आयात तक का तो अच्छी तरह याद होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए, सूरह बकरा स्टार्ट होती है, मुझे बताएं पहली 20 आयात में क्या है, आपको टिप्स पे होना चाहिए, फर्स्ट 5 आयास मुत्तकीन के बारे में, देन नेक्स्ट 2 आयास काफरों के बारे में, नेक्स्ट 13 आयास मुनाफिकीन की क्वालिटीज है, याद रहेगा ये, लिख लें इस बात को। अच्छा अब देखें 13 आयात मुनाफिकीन के लिए क्यों है, इसलिए कि इनको पहचानना सबसे मुश्किल है, समझ नहीं ना आती, कभी इधर कभी उधर, डामा डोल, इधर लगता है अच्छा ये हमारे साथ आज हमदर्द हैं तो जैदी हमारी तरफ है, कभी लगता है कि नहीं हमारी तरफ तो है ही नहीं, इन्होंने तो हमें धोखा दिया, उस तरफ हो गए, तो वो डामा डोल जो ग्रे एरिया होता है ना, उसकी समझ नहीं आती इंसान को, ये ब्लैक है कि वाइट है, कभी वाइट लगता है कभी ब्लैक लगता है, वाइट तो वाजे है, ब्लैक भी वाजे है, वो जो बीच बीच में होता है ना उसकी समझ में नहीं आती, इसलिए 13 आयात उनके लिए, उनको अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया। ठीक है, ये इसका समझ लें खुलासा है। तो आज हम सिर्फ 10 आयत तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट टाइम हम आगे इनकी सिफात देखेंगे मुनाफिकीन की, और अगली अब हम जो 2 आयतें पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, काफिरों के बारे में जो बिल्कुल इनकार करने वाले। चलिए देखते हैं, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر کا معنی کیا ہوتا ہے, کفر کا ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا, کیا معنی ہوتا ہے چھپانا, اسی لیے کسان کو کافر کہتے ہیں, اب وہ کوئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں گالی دے دی انہوں نے کافر کہہ کے, کافر کا مطلب تو اتنے چھپانا, کیا چھپایا اس نے, दिल गवाही दे रहा है कि ये हक है सच है अल्लाह एक है, दिल गवाही दे रहा है कि ये दीन भी सच्चाई पे मबनी है, ये रसूल जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जब इंसान इसके बावजूद के दिल गवाही दे रहा है फिर भी नहीं मानता, तो उसने इस गवाही को छुपा दिया। सेकेंड थिंग, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं छुपाने को, कि फितरत में इंसान के क्या है, जो बच्चा बॉर्न होता है ना वो इस्लाम पे होता है, अल्लाह ताला ने उसको प्रोग्राम किया हुआ, इस तरह उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि तौहीद के ऊपर होता है वो, अगर उसको कहीं छोड़ देंगे ना आप ऐसे ही अकेला, और कोई उसके ऊपर माहौल के, लोगों के, किसी चीज के असरात नहीं होंगे, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा तौहीद के ऊपर बढ़ेगा, पले बढ़ेगा। लोग क्यों चेंज हो जाते हैं? ये माहौल के असरात, उनके माँ बाप उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत क्या मतलब है? कि तौहीद पे पैदा होता है। लेकिन उसके बाद उसके वालदैन उसको मजूसी, यहूदी, काफिर, जो भी बना देते हैं ना। इसीलिए तो बच्चे वालदैन के लिए सदका जारिया बनते हैं ना, जैसे माँ बाप के अमल है तो वैसे ही वो बच्चा आगे फिर करता है। यानी हाँ, इल्लल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने यानी कुफर किया, उस गवाही को छुपा दिया। अब शरई इस्तलाह में क्या है? इनकार करने वाले हैं। हमारी शरीयत में जब कफरू का मतलब होगा तो आप ये नहीं लिखना कि जिन्होंने छुपा लिया, आपने फिर लिखना है जिन्होंने कुफर किया। कुफर का मतलब फिर क्या होगा इस्लामी इस्तलाह में? इनकार करना, कि उन्होंने देखे ना छुपा लिया उस चीज को और इनकार कर दिया, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ठीक है, तो जिन लोगों ने कुफर किया, सवा उन अलैहिम, बराबर है उनके लिए, उनके ऊपर बराबर है। क्या बराबर है? क्या चीज बराबर है? आगे अअंधरतहुम अम लम तुंजिरहुम, चाहे आप उनको वॉर्न करें या ना वॉर्न करें। मैंने जानबूझ के यहाँ पे डराने का लफ्ज नहीं यूज किया, क्यों? इसलिए कि डराना इसका इस एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं फुलफिल कर रहा। आप सबको वॉर्न का मतलब पता है, इसलिए मैं ये कह रहा, चाहे आप उनको वॉर्न करें या ना करें, ला यूमिनून, वो ईमान लाएंगे ही नहीं। तो आपके लिए बराबर हो गया ना, उन्होंने सोच लिया हमने नहीं मानना। अब जो इंसान दिल में ठान ले मैं ना मानू, अब आप उसके सामने हजार सर पटकें, आप कहें जहन्नुम ऐसी है, ये है, उसके अंदर ये अजाब हैं, अल्लाह ताला के उस दिन इतनी हिसाब किताब में सख्ती होगी, अल्लाह ताला का गजब होगा, ये होगा, वो उसको कोई असर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने ठान लिया मैंने मानना ही नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए बराबर हो गया। ये किसके बारे में बात हो रही है? क्या फारूक के बारे में तो ठीक है, लेकिन क्या हर काफिर के बारे में बात हो रही है? नहीं। अब जो बाहर घर से आपके बाहर कोई गैर मुस्लिम जा रहा है, अब ये नहीं कहेंगे इन लदीन कफरू सबाउन अल्लाह ताला ने तो ये कह दिया, अब इनको डराओ या ना डराओ, इन्होंने ईमान लाना ही नहीं, लिहाजा मुझे क्या जरूरत है इसको दावा करने की, मुझे क्या जरूरत है इसको इस्लाम के बारे में बताने की, वो तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया। भाई ये हर गैर मुस्लिम के बारे में नहीं है, ये उन काफरों के बारे में है जो अपने कुफर पे अड़ गए। समझ आइए, जो अड़े हुए हैं इस तरह के। देखें मुशरिकी ने मक्का को सोचे, ये सूरत क्या है? मक्की है कि मदनी है? सूरह बकरा मक्का में नाजिल हुई थी कि मदीना में? मदीना में, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 10 ईयर्स का पीरियड गुजर चुका है मक्का में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सरतोड़ कोशिश कर चुके हैं कि लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाएं और इनको जो है ना बताएं, लेकिन बाज लोगों ने नहीं माना। उनके सामने क्या तिलावत किया गया? ये कुरान की आयात। किसकी जुबान से तिलावत की गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से। आप खुद सोचें कि हमारा, हम किसी को देखते ना इधर उधर भटकता हुआ, तो हम कहते हैं कि उसको सीडीज देंगे, कैसेट देंगे, फलां स्पीकर को सुनो, फलां को सुनो, क्योंकि वो फलां बड़ा अच्छा बोलता है, उससे इसके दिल पे बड़ा असर होगा और हो सकता है ये सुधर जाए। हालांकि वो तो क्या एक छोटा मोटा स्पीकर है। सोचें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन स्पीकर और कौन हो सकता है? उनकी जुबान से कोई इंसान बात सुन ले और फिर भी ना माने, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल तक वो सुनाते रहे, फिर भी अगर उनको नहीं समझ आ रही, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन होते थे ना इस बात के ऊपर कि ये क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी भी थी जहन्नम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि आखिरत में क्या होने वाला है, और अगर ये इस तरह से मर गए तो इनका अंजाम क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तड़पते थे इनके लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को हलकान कर रहे थे इनके पीछे। देखिए एक बंदा किसी का गम ले लेना, मसलन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सुभान अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपने खैर ख्वाह हैं ना, अपने से सिंसियर हैं, उससे भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सिंसियर थे। हमारे माँ बाप जितने हमसे सिंसियर है ना, उससे भी ज्यादा वो हमसे सिंसियर से। और सोचें अगर कोई माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा तुम पढ़ लो नहीं तो तुम बहुत नुकसान उठाओगे, बहुत तुम्हारा नुकसान होगा, तड़पती है उसके लिए, तड़पती। माँ बच्चे के लिए, बच्चा सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, वो अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहा है। और माँ को पता है कि ये जिस रास्ते पे जा रहा है, जिन दोस्तों की कंपनी में रह रहा है, जिनके साथ उठ बैठ रहा है, ये तबाही की तरफ जा रहा है, तो अब क्या हाल होगा माँ का? वो तो अपने आप को रोक लगा लेगी ना, वो कैसा अपने आप को, यानी इंसान गम में घुलता है फिर। तो ये तो एक सिर्फ माँ का गम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माँ से ज्यादा भी हमसे मोहब्बत करने वाले थे, हमारे खैर ख्वाह थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये छोटी मोटी चीज के लिए नहीं परेशान थे कि चलो एक बच्चा बिगड़ गया तो क्या, बिगड़ गया तो इतना दुनिया का बिगड़ना, वो भी एक बिगड़ना है, लेकिन सोचे जो जहन्नुम की आग है उससे बड़ा तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता ना। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर इन्होंने ना माना तो इनका अंजाम वो आग है जिससे कभी नहीं निकल सकेंगे, सोचें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प कैसी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में तसल्लियां देते हैं, आप क्यों अपने आप को घुला रहे हैं? इन्नक ला तहदी मन अहबबता, ए नबी आप नहीं हिदायत दे सकते उसको जिसे आप मोहब्बत करते हैं, ये आपके हाथ में थोड़ा ही है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, आप अपने आप को ना हलकान करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमा दी कि आप इनको अब इंतजार करें या ना करें, इन्होंने ईमान नहीं लाना, और इसमें आपका नहीं है कसूर कि आपके बताने में कोई कमी है, या इसमें ये चीज नहीं है कि जो आपका जो घुलना है तो ये इस वजह से आप ना घुलें, क्योंकि आप इनको बताएंगे, इंतजार करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, इंतजार क्या होता है, जैसे कोई इंसान कहे, अब जैसे माँ का ही मैंने अभी आपको बताया, माँ कहे कि बेटा अगर तुम इस कंपनी से, बुरी कंपनी से ना निकले ना तो तुम तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तब वो क्या कर रही है, बच्चे को डरा रही है, लेकिन क्या कर रही है, वॉर्न कर रही है ना उसको। उसके अंदर क्या है, डराना ऐसा डराना नहीं है कि खौफ ज़दा कर देना, कि जैसे मैंने आपको बताया चोर डाकू करते हैं, वो उसको इंतजार नहीं कहेंगे। इंतजार ये है कि उसमें शफकत है, उसमें खैर ख्वाही है, उसमें मोहब्बत है, उसमें खलूस है, कि ये जो ये जिस जिस रास्ते की तरफ जा रहा है इसका अंजाम इतना बुरा है, ये उस अंजाम से बच जाए। आप मसलन कोई अंधा आदमी जा रहा है और आगे सड़क है, हाईवे जा रही है जिस पे बहुत ट्रैफिक है, आपको पता है कि ये अंधा अगर चला गया ना तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तो आप उसको जोर जोर से कहते हैं कि हट जाओ इस रास्ते से, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आगे ट्रैफिक है। तो आप क्या उसको कर रहे हैं, डरा थोड़ी रहे, आप उसको तो एक वॉर्न कर रहे हैं ना, इसमें आपकी हमदर्दी है उसके लिए, तो ये है इंसहार। अल्लाह ताला ने फरमा दिया अब आप इनको बताएं ना बताएं, यानी ये नाउ दे हैव क्रॉस द लिमिट्स। देखें एक होता है पॉइंट जब तक कि आप किसी को वापस ला सकते हैं, लेकिन एक वो भी केस हो जाता है ना जिसको हम कहते हैं होपलेस केस, होता है ना, तो अब ये होपलेस केस हो गए, अब ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यहां से वापसी नहीं है। अल्लाह ताला ना किसी को यहां तक पहुंचाए, मगर बाज लोग इस हद तक आगे चले जाते हैं कि अब वापसी नामुमकिन होती है, अब इन्होंने वापस नहीं आना, अब जो मर्जी आप सर पटख लें, चाहे जो मर्जी करें, अब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया, उनको दलील देने का फायदा नहीं, उन्होंने दलील थोड़ी, उनको दलील थोड़ी चाहिए, दलील उसको चाहिए होती जो कहता है कि अच्छा भाई मैं मान लेता हूँ, कोई दलील लेकर आओ, हाँ वाकई ये दलील सच्ची है। ये वो लोग हैं कि जिनको दलील नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइडेड है हमने नहीं मानना। अब ये कौन लोग थे उस जमाने में, देखें तो जैसे अबू जहल वगैरह थे, अबू लहब वगैरह थे, इनको क्या चीज थी कि जो इनको नहीं समझाई गई, कुरान भी सुनते थे और इतने शौकीन था अबू जहल कुरान सुनने का, छुप छुप के आके रात को सुना करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, तो ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था, मगर एक जिद थी बस के, और जिसको कहेंगे ना तकबर, तकबर और जिद जो है ना एक साथ ही समझ लें, इन दोनों चीजों को आप एक साथ ही समझ लें, एक ही तस्वीर के दो रुख समझ लें, कि जब तकबर आ जाता ना इंसान के अंदर कि अगर मैंने मान लिया इसकी बात को, ये तो समझेगी कि ये बड़ी ऊंची हो गई और ये जीत गई और मैं कम हो जाऊंगी, तो मैं तो नहीं मानती इस तरह, मैं अपने आप को इससे नीचा कर लूं, और ये कल की छोकरी अब हमें बताएगी, और ये फलां होगी, ये इस तरह की बातें जब इंसान के जहन में आ जाए ना, फिर वो नहीं हक को मानता, क्योंकि अब वो दलील को नहीं सुन रहा, वो अपने आप को ऊंचा देख रहा और उसको नीचा देख रहा। ठीक है, अब उसके बाद तकब्बर के बाद फिर क्या जिद शुरू हो जाती, जिद। उन लोगों को क्या जिद हो गई थी, उनको ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों नेमत मिल गई नबूवत की, ये कल का लड़का जो हमारे सामने पला बड़ा है, हम तो इससे बड़े हैं और हम इतने बड़े सरदार हैं, इनके पास क्या था, ये तो यतीम पैदा हुए, उसके बाद क्या, कभी कभी चचा के पास पल रहे हैं, दादा के पास पल रहे हैं, कभी किसी के पास पल रहे हैं, तो इनके पास ऐसा क्या था कि जो हमें, हम इतने बड़ी चीज होते हुए हमें नबूवत ना मिली तो इनको मिल गई है, तो अब अगर हमने इनकी बात मान ली तो हमें तो इनके सामने झुकना पड़ेगा ना, समझ लो इनकी इताअत करनी पड़ेगी ना, इनको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम तो नीचे हो गए, फिर मैं क्यों नीचे हूं, समझे ना, इनको क्यों ये चीज मिल गई, हमारे पास सरदारी थी पहले, अब हम बड़े थे, अब हम अपने सरदारी यानी गिव अप, सरदार तो फिर छोटा हो गया ना वो, तो फिर अब नबी के सामने तो सबको यानी एक तरह से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, ये नहीं ये देख सकते थे, इस वजह से इन्होंने हक को नहीं माना। तो याद रखिए कि ये ऐसे लोगों की बात नहीं जो आम काफिर है, आम गैर मुस्लिम है, हो सकता है किसी के सामने हक पहुंचा ही ना हो सकता है किसी ने उसको उतना बताया ही ना हो जितना बताना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 10 साल तबलीग किए तब ये आयतें आई हैं, वो भी उनके लिए जो अड़े में हैं और जिद में हैं, तब ये आई हैं, हमने कितने साल तबलीग कर ली जो हम कह दें कि नहीं इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, अब तो हम इनको, फिर तो दावा का काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो अगर हमने ये सबके लिए अप्लाई कर दिया ना तो फिर किसको दावा करेंगे, फिर तो ठीक है दावा करना या ना करना बराबर है, तो क्या फायदा फिर दावा करने का, समझ आ गई बात, तो इसको ये गलती नहीं करनी कि इसको हर तरफ अप्लाई करना शुरू करते हैं हम, अगर आज के वक्त के भी अबू जहल होते हैं, एक जहन में नाम आ रहा है, इंडिया में एक सियासी जमात है, उसका एक बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगी कि वो दुनिया से जा चुका भी है, जहन्नुम वासिल हुआ, मगर उस शख्स ने इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए इतना जहर उगला, इतना जहर उगला कि मरते दम तक उसकी यही हालत थी। तो कुछ लोग होते हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाते हैं, उन्होंने वापस नहीं आना होता, उनकी हठ धर्मी, और इसकी वजह से फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, खातम अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समीउ वाला अबसारिहिम गिशावा, पहला पार्ट क्या है, खातम अल्लाह वाला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला मोहर लगा देता है उनके दिलों पे, अब नहीं ये ईमान लेकर आएंगे, तुम जाओ, अगर तुम्हें नहीं मानना दूर हो जाओ तुम, अल्लाह को भी नहीं तुम्हारी जरूरत, अल्लाह ताला ने सील कर दिया तुम्हारे दिलों को, ठीक है अब कभी हिदायत तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं होगी, तुम हूं करते हो ना इसको, तुम इसको रिजेक्ट करते हो, अल्लाह को भी नहीं तुम्हारी जरूरत, याद रखें ये हिदायत, हिदायत ऐसी नेमत है सुभान अल्लाह, जब तक इंसान इसको मांगे नहीं, इसको तलब नहीं करे, इसको तलाश नहीं करे, उस वक्त तक ये मिलती नहीं है, ये ऐसा ही नहीं कि मुफ्त में लाकर किसी की झोली में जबरदस्ती डाल दी जाए, ले लो तुम हिदायत, ये वो नेमत है जिसके लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। तो इन लोगों ने जब इस तरह किया, ये इनका रवैया था, तो फिर अल्लाह ताला ने भी इनके दिलों को सील कर दिया। और खिताम, एक तो सील होती है ना, आप देखते हैं बॉटल्स के ऊपर भी सील उनको लगाई जाती है, क्या करते हैं वो वैक्स ही मेल्ट करके तो उनको साइडों से सील कर देते हैं, है ना, तो एक सील पुराने जमाने में कैसे की जाती थी, वो वैक्स को पिघला के ऊपर से उंडेला करते थे कि पूरी जैसे कवर हो जाए ना, जैसे आप बॉटल को इमेजिन करें उसके ऊपर पूरी वैक्स कवर होगी, अब क्या है चारों तरफ से वो कवर हो गई है, पूरी उंडेल दी ना, पोर कर दी उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला ने इस तरह इनके दिलों को सील कर दिया। अब क्या होगा, ये इनके लिए सजा है पता है? अच्छा आप ये नहीं कह सकते हाय बेचारों का क्या कसूर, इनके तो दिल ही सील हो गए तो फिर ये कैसे ही मान लें, बताएं भला अल्लाह ने पहले खत्मा किया कि इन्होंने पहले रिजेक्ट किया, इन्होंने पहले कुफर किया, पहले इन्होंने करा ना, पहले ये जिद पे अड़े, पहले इन्होंने इस्लाम को नापसंद किया, पहले इन्होंने इसकी मुखालफत की, पहले इन्होंने जोर लगाया इसकी इसकी दुश्मनी में, हक को हक समझने के बावजूद, पहचानने के बावजूद, हट धर्मी से तकबर की वजह से ये कुफर पे अड़े रहे, अब इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है। देखिए, हिदायत उसको मिलती है जो कि जो वाकई इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, जो इस पॉइंट तक पहुंच गए ना कि अब वो मान के ही नहीं उन्होंने देना, जो इसको इतना अपने लिए बुरा समझते हैं, इसके ऊपर वॉर करने की बजाय जिद्दी हुए पड़े हैं, सरकश हुए पड़े हैं, ठीक है, सुनते ही नहीं अब बात को, कहते हमने हमारे बाप दादा जिस पे चले थे हम बस उसी पे चलेंगे, और एड़ी चूटी का जोर लगा रहे हैं इस्लाम की मुखालफत में। अल्लाह ताला इनके दिल और दिमाग को ऐसा कर देता है, दिल से मतलब यही है कि दिमाग सोचने की सलाहियत, कि आप कैसे सील के, सील का मतलब क्या है, कोई फिजिकली ना आप सोचेंगे उनके दिलों के ऊपर कोई चीज सील हो गई, नहीं, सील का मतलब पता है क्या, कि अब उनसे हिदायत की तौफीक अल्लाह ने छीन ली, तौफीक छिन गई है, अब हिदायत इनके सामने आ भी जाए आप कुछ भी करोगे ना अब नहीं मिल सकती, वो सलाहियत ही अल्लाह ने छीन ली। वाला समाहिम, समात के ऊपर को भी सील कर दिया अल्लाह ताला ने, इनके सुनने की ताकत भी नहीं रही, सुनेंगे तो जाहिर है दिल तक बात पहुंचेगी ना, सुनने की भी तौफीक छीन ली। देखें, जो चीज इंसान सुनना नहीं चाहता ना, वो चाहे उसके सामने कितनी बार आके बताई जाए वो उसको सुनाई देती नहीं। आप मसलन आपके घर में बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, आप उनको इतना बुलाते हैं, उनके सामने खड़े रहे, कुछ भी करें उनको पता ही नहीं चलता, ऊंची ऊंची करीब खड़े होकर भी बोल रहे हैं, उनको नहीं सुन रहा होता, क्योंकि जो चीज इंसान नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनती, ये सुनना ही नहीं चाहते थे ना, तो अल्लाह ताला ने भी इनके कानों के ऊपर अब सील लगा दी, अब कान के जरिए कुछ अंदर नहीं जा सकता हिदायत की बात, बाकी सारी बातें सुन रही हैं, ये नहीं सुनती उनको। वह अला अब सॉरी ही मुगशावा, और आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, आंख आंख के आगे जब पर्दा आ जाता है ना, इसीलिए आंख के लिए सील का नहीं आया, आंख के आगे जब पर्दा आ जाता है तो आंख को कुछ नजर नहीं आता, कान के ऊपर पर्दा भी डाल देंगे तो कान को सुनता रहेगा, राइट, इसलिए कान के ऊपर सील किया गया और आंखों के आगे पर्दा डाला गया, अब आंख को कुछ नजर नहीं आ रहा, इनके सामने हक है, ये हक को पहचान सकते हैं, इनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी है, नहीं मानना, बस पता है ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, इनका कैरेक्टर कैसा रहा है, कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, तो ये जिंदगी सब नजर आ रही थी ना, अब पर्दा पड़ गया, अब पर्दा पड़ गया तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा, ये नहीं कि ब्लाइंड हो गए थे, बाकी हर चीज पता चल रही है, ये नहीं पता चलता बस। अच्छा, अब जब दिल भी बंद हो गए, कान भी बंद हो गए, आंखें भी बंद हो गई, तो अब क्या होगा, ये देखें, ये हैं ऑर्गन्स जिनके जरिए इंसान हिदायत पा सकता है, ठीक है, ये ऑर्गन्स हैं, लाइक आंखें हैं, आंखों से आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, अल्लाह की देखें कुदरतें इतनी, सुभान अल्लाह, बिखरी पड़ी है इस कायनात में, देखो आसमान को, देखो जमीन को, देखो दरख्तों को, देखो पहाड़ों को, एक एक पत्ते को देख लोगे ना तो तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरतें और इस कायनात में बिखरी हुई इतनी बेशुमार निशानियां तुम्हारे रब का पता देंगे कि कोई है इनका बनाने वाला। आंखें तो अल्लाह ने इसलिए दी थी ना, इसलिए नहीं दी थी कि तुम इनसे बस टीवी देखा करो और अखबारें पढ़ा करो या और अपने और काम किया करो, आंखें अल्लाह ने इसलिए दी, ठीक है, अपनी जरूरियात पूरी करो, लेकिन इनके जरिए अपने रब को पहचानो, अल्लाह तुम्हें नजर नहीं आएगा मगर उसकी निशानियां जरूर नजर आएंगी, तुम उसकी निशानियों को देख लोगे ना अपने रब को पहचान लोगे। कान दिए, ठीक है, तुम अपनी जरूरत की बात सुनो, म्यूजिक सुनने के लिए नहीं दिए थे, इसलिए दिए हैं कान कि कुछ सुनो, कुछ कोई हक बात सुनो, कोई तुम्हें कुछ बताएगा, पैगंबर आएंगे वो कुछ बताएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला था आसमानों से, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ही उनको फरमा दिया था, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आती रहेगी, जो हिदायत को फॉलो करेगा उसके लिए कोई गम कोई खौफ नहीं होगा। तो हिदायत आएगी, पैगंबर आएंगे, बातें बताएंगे, हिदायत अल्लाह भेजता रहेगा और हर जमाने में भेजी है। आज हमारे पास क्या है? आप कहेंगे आप तो आज तो हमारे पास पैगंबर नहीं है, तो अल्लाह ताला की किताब उसका कलाम इसीलिए तो महफूज आपके पास पहुंचा है कि पैगंबर ने नहीं आना। अब आप इसी कलाम को सुने, इसी को पढ़ें और अल्लाह को पहचाने। इसमें भी तो आयात है, आयात निशानियां होती हैं, निशानी वो कहते हैं आयत, तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, सुनो इनको, इससे भी तुम्हें हिदायत मिलेगी। और दिल है, दिल सोचता है समझता है, बात को कैलकुलेट करता है, ठीक है? तो दिल से सोचो और तुम हिदायत पा जाओगे। लेकिन जिसके लिए सारे जराए, ये समझ ले रास्ते हैं, डोर्स हैं, गेट्स हैं हिदायत के आने के, लेकिन जिसके लिए ये सारे ही बंद हो जाएं, उसको कहाँ से हिदायत मिलेगी? ना वो कुछ सुनता है तो देख ही ले, ना वो कुछ देखता है, सोच ही ले ना वो कुछ सोचता है। तो ऐसों के लिए वाला हम आजाबुन आवीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। एक होता है कबीर और एक होता है आवीम। कबीर को भी हम बड़ा ही कह देते हैं, आवीम को भी बड़ा ही कह देते हैं, फर्क क्या दोनों में? उलट इनका देखें पहले। आदीम का उलट है हकीर, आदीम का उलट क्या है? हकीर। और कबीर का उलट क्या है? सगीर। अच्छा, अब क्योंकि उलट से इंसान को चीज समझ आती है ना ज्यादा। अच्छा, सगीर जो है सगीर से भी नीचे हकीर होता है, तो इसका मतलब कबीर से भी ऊपर आदीम है, आदीम बहुत बड़ा। और ये किसके वजन पे है? इसे राइमिंग कौन सा था? आदीम रहीम। मैंने आपको रहीम में क्या बताया था? बार बार रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो आदीम में भी क्या है? बहुत ज्यादा, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और बार बार का भी लफ्ज आप इसमें लाएंगे, क्योंकि एक ही राइमिंग है ना, एक ही वजन पे है। क्या चीज होगी बहुत ज्यादा और बार बार? अजाब। अल्लाह ताला हमें अपने हर अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला तो कोई भी अजाब बहुत बड़ा है, हत्ता कि जो सबसे कम अजाब हो रहा होगा ना, वो उस शख्स को हो रहा होगा जिसके पैरों के नीचे चिंगारियां होंगी आग की, यानी उसके पैरों के जो जूते होंगे ना, उसके तस्मे समझ लें आग के हैं, आग उसके पैर के नीचे है। ऐसे बंदे का उस एक चिंगारी से उसका दिमाग खौल रहा होगा, जैसे हंडिया उबलती ना, इस तरह से उसका दिमाग हो रहा होगा, सिर्फ वो एक नीचे है उसके पैर के चिंगारी। तो उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुंच रहा है? दिमाग तक। और वो सोच रहा होगा, ये हदीस में है ये सारी बात, कि वो सोच रहा होगा कि सबसे ज्यादा अजाब में मैं हूं, सबसे ज्यादा अजाब मुझे हो रहा है। तो वो सोचें जिस अजाब को अल्लाह ताला कह दें कि वो अजीम अजाब है, वो अजाब कितना बड़ा होगा जिसको रब खुद कह रहा है बड़ा है, और उसमें बार बार होना है और बहुत ज्यादा होना है, जिसका खतरा बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। इसीलिए तो है कि चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े, चाहे तुम्हें आग में जला दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, ईमान को हाथ से ना जाने देना, क्योंकि कुफर इज नो चॉइस। और ये भी जहन में रखें कि कभी भी ये ना सोचें हमें सब पता है, हमें कोई क्या बताएगा हमें, नहीं, इनका मसला यही था ना, तकब्बुर, हमें बताएंगे ये होके हमें बताएगा, नहीं। हर इंसान ये समझे कि मुझे इल्म की जरूरत है, किसको नहीं है जरूरत, हर एक को जरूरत है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। इनके पास इल्म था, पता था इनको बातों का, ऐसा नहीं था कि पता ही नहीं है, मगर तकब्बुर की वजह से झुकते नहीं थे ना, तो अल्लाह ने इनसे तौफीक छीन ली। तो कभी ये तकब्बुर ना आए कि मुझे बहुत पता है और मैं बड़ी चीज हूं और मैं क्यों किसी से सीखूं, मैं क्यों समझूं, मैं क्यों ऐसे करूं। कि देखिए काफर हुआ ना इनकार करना, तो इनकार इंसान किस चीज का करता है, जिसको जानता है या जिसको जानता ही नहीं है? जिसको जानता है ना उसका इनकार करता है। तो वो जानते थे, पता था उनको, इनका हमने नहीं मानना। यहां तक आप तिलावत सुने और सोचें कि आपको ये आयात कितनी समझ आई है।
أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون